पृष्ठ संख्या 81।
रजनी।
मध्यवर्गीय परिवार के फ्लैट का एक कमरा। एक महिला रसोई में व्यस्त है, घंटी बजती है, बाई दरवाजा खोलती है, रजनी का प्रवेश।
रजनी। लीला बेन, कहाँ हो? बाजार नहीं चलना क्या?
लीला रसोई में से हाथ पोंछती हुई निकलती है। चलना तो था, पर इस समय तो अमित आ रहा होगा अपना रिजल्ट लेकर। आज उसका रिजल्ट निकल रहा है ना? चेहरे पर खुशी का भाव।
रजनी। अरे वाह, तब तो मैं मिठाई खाकर ही जाऊंगी। अमित तो पढ़ने में इतना अच्छा है कि फर्स्ट आएगा, और नहीं तो सेकंड तो कहीं गया नहीं। तुमको मिठाई भी बढ़िया खिलानी पड़ेगी। सूजी के हलवे से काम नहीं चलने वाला, मैं अभी बता देती हूँ।
लीला हंसकर, नहीं नहीं, मैं तुम्हें अच्छी मिठाई ही खिलाऊंगी। मैंने पहले से ही मंगवा कर रखी है। हाँ, केसरिया रसमलाई अमित को बहुत पसंद है ना?
रजनी, देखा, मुझे अपने घर में ही केसर की सुगंध आ गई। बाजार का तो मैं बहाना करके चली आई, वरना तुम तो मुझे काट ही देती।
लीला कैसी बात करती हो? मैं एक बार काट भी दूं, लेकिन अमित अपने मुंह में डालने से पहले रसमलाई लेकर तुम्हारे फ्लैट में दौड़ता। मैं कोई भी चीज घर में बनाऊं या बाहर से लाऊं, अमित जब तक तुम्हारे भोग नहीं लगा लेता, हम लोग खा थोड़े ही सकते हैं। रजनी आंटी तो हीरो है उसकी। दोनों खिलखिलाकर हंसती हैं। पृष्ठ संख्या 82।
रजनी। बहुत मेधावी बच्चा है अमित, तुम देखना तो आगे जाकर क्या बनता है।
लीला, बस सब तुम्हारा ही आशीर्वाद है। फिर घंटी बजती है। लीला एक तरह से दौड़ते हुए दरवाजा खोलती है। अमित का प्रवेश। रोज की तरह भारी बस्ते की जगह एक हल्का सा थैला है।
रजनी अमित को बाहों में भरने के लिए दोनों बाहें फैलाते हुए आगे बढ़ती है। कॉन्ग्रेचुलेशन अमित, बधाई देने के लिए रजनी आंटी पहले से मौजूद हैं। अमित का चेहरा उतरा हुआ है, पर दोनों में से अभी तक उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। अमित आंसू भरी आंखों से थैले में से रिपोर्ट निकालकर माँ की ओर फेंकते हुए।
अमित, लो लो देखो क्या हुआ है मेरे रिजल्ट का। मैंने कितना कहा था कि मैथ्स में भी मेरी ट्यूशन लगवा दीजिए, वरना मेरा रिजल्ट बिगड़ जाएगा। बस वही हुआ। मैथ्स में ही तो पूरे नंबर आ सकते हैं, रिजल्ट बन बिगड़ सकता है। रिपोर्ट रजनी देखने लगती है। लीला उसे अपनी बाहों में भरकर।
लीला, पर तू सारे सवाल ठीक करके आया था। यहाँ आकर पापा के सामने तूने फिर से किया था अपना सारा पेपर, सब तो ठीक था। तेरे पापा ने नहीं कहा था कि 4-5 नंबर भले ही काट लें सफाई वफाई के, पर 95 तो तेरे पक्के हैं।
रजनी रिपोर्ट देखते हुए, पर मिले तो कुल 72 ही हैं। फिर दूसरे विषयों के नंबर भी पढ़ने लगती है। इंग्लिश 86, हिस्ट्री 80, सिविक्स 88, हिंदी 82, ड्राइंग 90, सबसे कम मैथ्स में ही।
अमित गुस्से और दुख से,
कम तो होंगे ही, ट्यूशन नहीं लेने से मिलते हैं कहीं अच्छे नंबर? सर तो बार बार कहते थे कि ट्यूशन कर लो वरना बाद में फिर मत रोना। रो पड़ता है। पृष्ठ संख्या 83।
लीला, अपराधी की तरह सफाई देते हुए, तुझे अंग्रेजी को लेकर थोड़ी परेशानी थी, सो अंग्रेजी में करवा दी थी ट्यूशन। अब दो दो विषयों की ट्यूशन, फिर लंबी चौड़ी फीस। बेटे, अपनी आर्थिक मजबूरी की बात कुछ शब्दों से नहीं, चेहरे से व्यक्त करती है। पर यह तो अंधेरी हुआ कि सारा पेपर ठीक हो, फिर भी नंबर काट लो।
रजनी की भावों में एकाएक बल पड़ जाते हैं। वह रोते हुए अमित को खींचकर अपने पास सटा लेती है। रो मत, उसके आंसू पोंछते हुए, अमित रोएगा नहीं, समझे? मैं जो पूछती हूं उसका जवाब देना, बस। कुछ देर रुककर, तुझे अच्छी तरह याद है कि तूने पूरा पेपर ठीक किया था? अमित स्वीकृति में सिर हिलाता है। पापा के पास दोबारा पेपर करने से पहले दोस्तों से या किताबों से उन सवालों के जवाब तो नहीं देख लिए थे?
अमित,
नहीं ज्यों के त्यों आकर कर दिए थे। हमको आते थे वो सारे सवाल।
रजनी, मैथ्स के सर कौन हैं?
मिस्टर पाठक।
कितने लड़के ट्यूशन लेते हैं उनसे?
अमित, 22। साल के शुरू में तो 8 लेते थे, फिर पहले टर्मिनल के बाद से 15 हो गए थे। हाफ ईयरली के बाद 7 लड़कों ने और लेना शुरू कर दिया, मुझसे तो तभी से कह रहे थे।
लीला, हाफ ईयरली में तो इसके 96 नंबर आए थे, इसी ने बताया था कि क्लास में सबसे ज्यादा हैं।
रजनी, उसके बाद भी कहते थे कि ट्यूशन लो? अमित, हाँ, कॉपी लौटाते हुए कहा था कि तुमने किया तो अच्छा है, पर यह हाफ ईयरली है, बहुत आसान पेपर होता है इसका। तो अब अगर ईयरली में भी पूरे नंबर लेने हैं तो तुरंत ट्यूशन लेना शुरू कर दो, वरना रह जाओगे। 7 लड़कों ने तो शुरू भी कर दिया था, पर मैंने जब मम्मी पापा से कहा तो हमेशा बस एक ही जवाब, मम्मी की नकल उतारते हुए, मैथ्स में तो तू वैसे ही बहुत अच्छा है, क्या करेगा ट्यूशन लेकर, देख लिया अब 6th पोजीशन आई है मेरी, जो आज तक कभी नहीं आई थी। अमित की आंखों से फिर आंसू टपक पड़ते हैं।
रजनी, डांटते हुए फिर आंसू, जानता नहीं रोने वाले बच्चे रजनी आंटी को बिल्कुल पसंद नहीं है। मम्मी ने बिल्कुल ठीक ही कहा और ठीक ही किया, जिस विषय में तुम वैसे ही बहुत अच्छे हो उसमें क्यों लोगे ट्यूशन, ट्यूशन तो कमजोर बच्चे लेते हैं।
आप जानती नहीं आंटी, अच्छे बुरे की बात नहीं होती, अगर सर कहें और बार बार कहें तो लेनी ही होती है, वरना तो नंबर कम हो ही जाते हैं।
रजनी, पेपर अच्छा करो तब भी नंबर कम हो जाते हैं?
अमित, हाँ, कितना भी अच्छा करो फिर भी कम हो जाते हैं, जैसे मेरे हो गए।
रजनी, यानी कि अच्छा पेपर करने पर भी कम आते हैं सिर्फ इसलिए कि ट्यूशन नहीं ली, तो यह तो सर की गलती नहीं बदमाशी है, और तू मम्मी से लड़ रहा है, सर से जाकर लड़।
अमित इस भाव से सर हिलाता है मानो कितनी बेकार की बात कर रही हैं रजनी आंटी। लीला 2 गिलासों में शिकंजी बनाकर लाती है, अमित लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता तो रजनी घुड़कती है,
चलो पियो शिकंजी, देखते नहीं चेहरा कैसा पसीने पसीने हो रहा है। दोनों शिकंजी पीने लगते हैं, इस दौरान रजनी कुछ सोच रही है शिकंजी खत्म करके। कल आप 9 बजे तैयार रहिए अमित साहब, आपके स्कूल चलना है।
अमित एकदम डर जाता है, कल से तो छुट्टी है, पर आप अगर स्कूल जाकर कुछ कहेंगी तो सर मुझसे बहुत गुस्सा हो जाएंगे, वहां मत जाइए प्लीज, प्लीज वहां बिल्कुल मत जाइए।
लीला,
पृष्ठ संख्या 85।
लीला, हाँ रजनी, तुम कुछ करोगी कहोगी तो अगले साल कहीं और ज्यादा परेशान ना करें इसे, अब जब रहना इसी स्कूल में है तो इन लोगों से झगड़ा।
रजनी बात को बीच में ही काटकर गुस्से से, यानी कि वे लोग जो भी जुल्म ज्यादती करें हम लोग चुपचाप बर्दाश्त करते जाएं? सही बात कहने में डर लग रहा है तुझे, तेरी माँ को? अरे जब बच्चे ने सारा पेपर ठीक किया है तो हम कॉपी देखने की मांग तो कर ही सकते हैं, पता तो लगे कि आखिर किस बात के नंबर काटे हैं।
अमित झुंझलाकर,
बता तो दिया आंटी, आप भी।
रजनी गुस्से से, ठीक है तो अब बैठकर रो, तुम माँ बेटे दोनों। दंदनाती निकल जाती है दोनों के चेहरे पर एक असहाय सा भाव।
लीला, अब यह रजनी कोई और मुसीबत खड़ी ना करे।
दृश्य समाप्त।
नया दृश्य, स्कूल के हेडमास्टर का कमरा, बड़ी सी टेबल, दीवार के सहारे कांच की अलमारी में बच्चों द्वारा जीते हुए कप और शील्ड जमे हुए रखे हैं, दीवार पर कुछ नेताओं की तस्वीरें, एक बड़ा सा मैप लटका है। एक स्कूल के हेडमास्टर के कमरे का वातावरण तैयार किया जाए। हेडमास्टर काम में व्यस्त है, चपरासी बड़े अदब से एक चिट लाकर रखता है, हेडमास्टर कुछ क्षण उसे देखता रहता है। हेडमास्टर, बुलाओ।
रजनी का प्रवेश, नमस्कार करती है।
हेडमास्टर, बैठिए, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं?
रजनी, मैं 7th क्लास के अमित सक्सेना की मैथ्स की कॉपी देखना चाहती हूँ। हेडमास्टर के चेहरे पर ऐसा भाव जैसे वह कुछ समझा ना हो, ईयरली एग्जाम्स की, कल ही जिसका रिजल्ट निकला है।
पृष्ठ संख्या 86। हेडमास्टर, सॉरी मैडम, ईयरली एग्जाम्स की कॉपियां तो हम लोग नहीं दिखाते हैं।
रजनी, जानती हूं मैं, लेकिन बात यह है कि अमित ने मैथ्स का पूरा पेपर ठीक किया था, लेकिन इसे कुल 72 नंबर ही मिले। कॉपी देखकर सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि अमित को अपने बारे में कुछ गलत फहमी हो गई थी या गलती एग्जामिनर की है।
हेडमास्टर, सारी बात को बहुत हल्के ढंग से लेते हुए आप भी कमाल करती हैं। बच्चे ने कहा और आपने मान लिया। अरे, हर बच्चा घर जाकर यही कहता है कि उसने पेपर में बहुत अच्छा किया है और उसे बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर हम इसी तरह कापियां दिखाने लग जाएं तो यहां तो पेरेंट्स की भीड़ लगी रहे सारे समय। इसीलिए तो ईयरली एग्जाम्स की कापियां ना दिखाने का नियम बनाया गया है स्कूलों में।
रजनी, अपने गुस्से पर काबू पाते हुए, देखिए, आप चाहें तो अमित का पूरा रिजल्ट देख सकते हैं। मैथ्स में हमेशा 100% नंबर लेता रहा है। इस साल भी उसने पूरा पेपर ठीक किया है। तैश आ ही जाता है। कॉपी देखकर मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि नंबर आखिर कटे किस बात के हैं।
हेडमास्टर, आप बहस करके बेकार ही अपना और मेरा समय बर्बाद कर रही हैं। मैंने कह दिया ना कि इन कॉपियों को दिखाने का नियम नहीं है और मैं नियम नहीं तोड़ूंगा।
नियम? यानी कि आपका स्कूल बहुत नियम से चलता है?
हेडमास्टर गुस्से से, व्हाट डू यू मीन?
आई मीन व्हाट आई से। नियम का जरा भी ख्याल होता तो इस तरह की हरकतें नहीं होती स्कूल में। कोई बच्चा बहुत अच्छा है किसी विषय में, फिर भी उसे मजबूर किया जाता है कि वह ट्यूशन ले। ये कौन सा नियम है आपके स्कूल का?
पृष्ठ संख्या 87। देखिए, यह टीचर्स और स्टूडेंट्स का अपना असली मामला है। वो पढ़ने जाते हैं और वो पढ़ाते हैं। इसमें बीच में स्कूल आता है ना स्कूल के नियम। इस बारे में हम क्या कर सकते हैं?
कुछ नहीं कर सकते आप, तो मेहरबानी करके ये कुर्सी छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ कर सकने वाला आदमी ही चाहिए जो ट्यूशन के नाम पर चलने वाली धांधलियों को रोक सके, मासूम और बेगुनाह बच्चों को ऐसे टीचर्स के शिकंजे से बचा सके जो ट्यूशन ना लेने पर बच्चों के नंबर काट लेते हैं। और आप हैं कि कॉपियां ना दिखाने के नियम में उनके सारे गुनाह को ढक देते हैं।
विल यू प्लीज गेट आउट फ्रॉम दिस रूम। चपरासी, दौड़ता हुआ चपरासी आता है। मैम साहब को बाहर ले जाओ।
मुझे बाहर करने की जरूरत नहीं। बाहर कीजिए उन सब टीचर्स को जिन्होंने आपकी नाक के नीचे ट्यूशन का यह घिनौना रैकेट चला रखा है। पर आप तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए अब मुझे ही कुछ करना होगा और मैं करूंगी, देखिएगा आप।
तम तमाती हुई निकल जाती है। हेडमास्टर चपरासी पर ही बिगड़ पड़ता है। जाने किस किस को भेज देते हो भीतर।
मैंने तो आपको स्लिप लाकर दी थी साहब।
हेडमास्टर गुस्से में स्लिप की चिंदी चिंदी करके फेंक देता है, कुछ इस भाव से मानो रजनी की ही चिंदियां बिखेर रहा हो।
दृश्य समाप्त।
नया दृश्य। रजनी का फ्लैट। शाम का समय, घंटी बजती है। रजनी आकर दरवाजा खोलती है। पति का प्रवेश। उसके हाथ से ब्रीफ केस लेती है। पृष्ठ संख्या 88। पति, जूते खोलते हुए, तुम आज दिन में कहीं बाहर गई थी क्या?
तुम्हें कैसे मालूम?
फोन किया था, एक फाइल रह गई थी, सोचा चपरासी को भेजकर मंगवा लूं, पर कोई घर में हो तब ना। पति के चेहरे पर खीज भरा गुस्सा पुता हुआ है।
तुम फाइल भूल गए और जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं, पर फिर भी उसके लिए मुझे घर बैठना चाहिए, ये कौन सी बात हुई?
पति, जरा शांत होते हुए, अच्छा अच्छा, गई कहाँ थी?
रजनी एक स्कूल का नाम लेती है।
पति स्कूल का नाम दोहराता है। तुम क्या करने गई थी वहाँ?
रजनी गदगद भाव से, पहले चाय ले आऊं फिर बताती हूँ।
कैमरा रजनी के साथ किचन में, गुनगुनाते हुए रजनी खाने का भी कुछ बना रही है। लगता है जो कुछ करके आई उससे बहुत प्रसन्न है। दृश्य फिर बाहर के कमरे में। नाश्ते की प्लेट काफी खाली हो चुकी है, जिससे लगे कि रजनी सारी बात बता चुकी है। रजनी,
बोलती बंद कर दी हेडमास्टर साहब की, जवाब देते नहीं बना तो चिल्लाने लगे, पर मैं क्या छोड़ने वाली हूँ इस बात को।
अच्छा, मास्टर लोग ट्यूशन करते हैं या धंधा करते हैं, पर तुम्हें अभी बैठे बिठाए इससे क्या परेशानी हो गई? तुम्हारा बेटा तो अभी पढ़ने नहीं जा रहा है ना?
रजनी एकदम भड़क जाती है। यानी कि मेरा बेटा जाए तभी आवाज उठानी चाहिए, अमित के लिए नहीं उठानी चाहिए? और जो इतने इतने बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं उनके लिए नहीं उठानी चाहिए? सब कुछ जानने के बाद भी नहीं उठानी चाहिए?
अरे ठेका ले रखा है तुमने सारी दुनिया का। पृष्ठ संख्या 89।
रजनी देखो तुम मुझे फिर गुस्सा दिला रहे हो। रवि गलती करने वाला तो है ही गुनाहगार, पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनाहगार नहीं होता, जैसे लीला बेन और कांति भाई और हजारों हजारों माँ बाप। लेकिन सबसे बड़ा गुनाहगार तो वह है जो चारों तरफ अन्याय, अत्याचार और तरह तरह की धांधलियों को देखकर भी चुप बैठा रहता है, जैसे तुम। हमें क्या करना है? हमने कोई ठेका ले रखा है दुनिया का? माय फुट। उठकर भीतर जाने लगती है, जाते जाते मुड़कर, तुम जैसे लोगों के कारण ही तो इस देश में कुछ नहीं होता, हो भी नहीं सकता। भीतर चली जाती है।
अरे चढ़ा दिया सूली पर।
दृश्य समाप्त।
नया दृश्य। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ऑफिस का बाहरी कक्ष। कमरे के बाहर उसके नाम और पद की तख्ती लगी है, साथ ही मिलने का समय भी लिखा है। एक स्टूल पर चपरासी बैठा है, सामने की मेज पर रजनी और तीन चार लोग और बैठे हैं प्रतीक्षारत। रजनी के चेहरे से बेचैनी टपक रही है, बार बार घड़ी देखती है। मिलने का समय समाप्त होता जा रहा है। रजनी
चपरासी से, कितनी देर और बैठना होगा?
हम क्या बोलेगा, जब साहब घंटी मारेगा बुलाएगा तभी तो ले जाएगा, बहुत बिजी रहता ना साहब।
रजनी अपने में ही गुनगुनाते हुए, ये तो लोगों से मिलने का समय है, न जाने किसमें बिजी बनकर बैठ जाते हैं।
चपरासी दूसरी तरफ देखने लगता है, कैमरा ऑफिस के अंदर चला जाता है। साहब मेज पर पेपर वेट घुमा रहे हैं, पृष्ठ संख्या 90। फिर घड़ी देखता है, फिर घुमाने लगता है। बाहर एक आदमी आता है, अपने नाम का स्लिप के नीचे 5 रुपये का एक नोट रख कर देता है और चपरासी का कंधा थपथपाता है। चपरासी हंसकर भीतर जाता है, लौटकर उस आदमी को तुरंत अपने साथ ले जाता है। रजनी के चेहरे पर तनाव, घूर कर चपरासी को देखती है। थोड़ी देर में आदमी बाहर निकलता है। रजनी उठकर दंदनाती हुई भीतर जाने लगती है।
चपरासी,
अरे अरे अरे, किधर को जाता? अभी घंटी बजा क्या?
घंटी तो मिलने का समय खत्म होने तक बजेगी भी नहीं।
दरवाजा ढकेल कर भीतर चली जाती है।
चपरासी,
अरे कैसी औरत है, सुनतीज नहीं? वहां बैठे 2-3 लोग हंसने लगते हैं। दृश्य कमरे के भीतर। निदेशक कुर्सी की पीठ से टिक कर सिगरेट पी रहा है, रजनी को देखकर आश्चर्य से।
निदेशक,
आपको स्लिप भेजकर भीतर आना चाहिए था ना?
स्लिप तो घंटे भर से आपके चपरासी की जेब में पड़ी है और शायद 2-4 दिन चक्कर लगवाने तक पड़ी ही रहेगी।
क्या कह रही हैं आप?
तो क्या ये सीधी साफ सी बात भी मुझे समझानी होगी आपको? खैर अभी छोड़िए इस बात को, इस समय मैं आपके पास किसी दूसरे काम से ही आई हूँ।
निदेशक के चेहरे पर रजनी को लेकर एक आश्चर्य मिश्रित कौतूहल का भाव उभरता है। निदेशक कहिए।
देखिए, मैं स्कूलों, विशेषकर प्राइवेट स्कूलों और बोर्ड के आपसी रिलेशंस के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर रही हूँ।
कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है क्या? वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट।
बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए।
जी, पृष्ठ संख्या 91।
निदेशक
कहिए, आप क्या जानना चाहती हैं?
रजनी, जिन प्राइवेट स्कूलों को आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, बोर्ड उन्हें शायद 90% ग्रांट देता है?
निदेशक जरा गर्व से, जी हाँ देता है। बोर्ड का काम ही यह है कि शिक्षा के प्रचार प्रसार में जितना भी हो सके सहयोग करे। इट्स अवर ड्यूटी मैडम।
जब इतनी बड़ी एड देते हैं तो आपका कोई कंट्रोल भी रहता होगा स्कूलों पर?
निदेशक ऑफ कोर्स, बोर्ड के बहुत से ऐसे नियम हैं जो स्कूलों को मानने होते हैं। और स्कूल मानते हैं। सिलेबस बोर्ड बनाता है, फाइनल ईयर के एग्जाम्स बोर्ड कंडक्ट करता है।
ओह, स्कूलों में आजकल प्राइवेट ट्यूशंस का जो सिलसिला चला हुआ है, ट्यूशंस क्या बच्चों को लूटने का जो धंधा चला हुआ है, उसके बारे में आपका बोर्ड क्या करता है? निदेशक बड़े सहज भाव से,
इसमें धंधे की क्या बात है? जब किसी का बच्चा कमजोर होता है तभी उसके माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं। अगर लगे कि कोई टीचर लूट रहा है तो उस टीचर से ना लें ट्यूशन, किसी और के पास चले जाएं, वह कोई मजबूरी तो है नहीं।
बच्चा कमजोर नहीं, होशियार है, बहुत होशियार, उसके बावजूद उसका टीचर लगातार उसे कोसता रहता है कि वह ट्यूशन ले वरना पछताएगा। लेकिन बच्चे के माँ बाप को ज़रूरी नहीं लगता और वे नहीं लगवाते। जानते हैं क्या हुआ? मैथ्स का पूरा पेपर ठीक करने के बावजूद उसे कुल 72 नंबर मिलते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने टीचर के बार बार कहने पर भी ट्यूशन नहीं ली।
पृष्ठ संख्या 92
निदेशक।
वेरी सैड। हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए ऐसे टीचर के खिलाफ।
क्या खूब, आप कहते हैं कि हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए। हेडमास्टर कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, तब करेगा कौन? मैं पूछती हूँ कि ट्यूशन के नाम पर चलने वाले इस घिनौने रैकेट को तोड़ने के लिए दखलअंदाजी नहीं करनी चाहिए आपको? आपके बोर्ड को? चेहरा तमतमा जाता है। निदेशक,
लेकिन हमारे पास तो आज तक किसी पेरेंट से इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई।
यानी कि शिकायत आने पर ही आप इस बारे में कुछ सोच सकते हैं? वैसे शिक्षा के नाम पर दिन दहाड़े चलने वाली इस दुकानदारी की आपके
बहुत ही व्यंग्यात्मक ढंग से
आपके बोर्ड ऑफ एजुकेशन को कोई जानकारी ही नहीं, कोई चिंता ही नहीं।
अरे कैसी बात करती हैं आप, इतने इम्पोर्टेंट मैटर्स रहते हैं हम लोगों के पास। अभी पिछले 6 महीने से तो नई शिक्षा प्रणाली को लेकर ही कितने सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए हैं हमने।
इम्पोर्टेंट मैटर्स, नई शिक्षा प्रणाली। अरे पहले इस शिक्षा प्रणाली के छेदों को तो रोकिए, वरना बच्चों के भविष्य के साथ साथ आपकी नई शिक्षा प्रणाली भी छनकर गड्ढे में चली जाएगी। निदेशक थोड़े गुस्से के साथ,
आप ही पहली महिला हैं और हो सकता है कि आखिरी भी हों, हाँ, जो इस तरह की शिकायत लेकर आई हैं।
तो ठीक है, फिर आपके पास शिकायत का ढेर ही लगवा कर रहूंगी।
झटके से उठकर बाहर चली जाती है। निदेशक देखता रहता है, फिर कंधे उचका देता है। अब मोंटाज में कुछ दृश्य दिखाए जाएं। रजनी फोन कर रही है, मेज पर कुछ पत्र रखे हैं और रजनी एक रजिस्टर में उनके नाम पते उतार रही है। पृष्ठ संख्या 93। साथ में 1-2 महिलाएं और भी हैं। फिर एक के बाद एक 3-4 घरों से माँ बाप से मिल रही है, उन्हें समझा रही है। साथ में लीला बेन और 3-4 महिलाएं और भी हैं। दृश्य समाप्त।
नया दृश्य,
किसी अखबार का दफ्तर। कमरे में संपादक बैठे हैं और 3-4 स्त्रियों के साथ रजनी बैठी है।
संपादक,
आपने तो इसे बाकायदा एक आंदोलन का रूप ही दे दिया। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। इसके बिना यहां चीजें बदलती भी तो नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में फैली इस दुकानदारी को तो बंद होना ही चाहिए।
रजनी एकाएक जोश में आकर, आप भी महसूस करते हैं ना ऐसा? तो फिर साथ दीजिए हमारा। अखबार यदि किसी इशू को उठा ले और लगातार उस पर चोट करता रहे, फिर वह थोड़े से लोगों की बात नहीं रह जाती, सबकी बात बन जाती है।
बिल्कुल ठीक।
आंख मूंद कर नहीं रह सकता फिर कोई उससे। आप सोचिए जरा, अगर इसके खिलाफ कोई नियम बनता है तो कितने पेरेंट्स को राहत मिलेगी, कितने बच्चों को भविष्य सुधर जाएगा, उन्हें अपनी मेहनत का फल मिलेगा। माँ बाप के पैसे का नहीं, शिक्षा के नाम पर बचपन से ही उनके दिमाग में यह तो नहीं भरेगा कि पैसा ही सब कुछ है।
बस मैं समझ गया आपकी सारी तकलीफ, आपका सारा गुस्सा।
तो फिर दीजिए हमारा साथ, उठाइए इस इशू को, लगातार लिखिए और धुआंधार लिखिए।
पृष्ठ संख्या 94।
संपादक,
इसमें आप अखबार वालों को अपने साथ ही पाएंगी। अमित के उदाहरण से आपकी सारी बात मैंने नोट कर ली है। एक अच्छा सा राइटअप तैयार करके पीटीआई के द्वारा मैं एक साथ फ्लैश करवाता हूँ।
एक काम और कीजिए,
25 तारीख को हम लोग पेरेंट्स की एक मीटिंग कर रहे हैं। राइट अप के साथ इसकी सूचना भी दे दीजिए तो सब लोगों तक खबर पहुंच जाएगी। व्यक्तिगत तौर पर तो हम मुश्किल से 100-125 लोगों तक संपर्क कर सकते हैं, वो भी रात दिन भाग दौड़ करके।
जी जी,
अधिक से अधिक लोगों के आने के आग्रह के साथ सूचना दीजिए।
जी
ये हुई ना बात।
दृश्य समाप्त।
नया दृश्य।
मीटिंग का स्थान। बाहर कपड़े का बैनर लगा हुआ है, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और भीतर जा रहे हैं। लोग खुश हैं, लोगों में जोश है, विरोध और विद्रोह का पूरा माहौल बना हुआ है। दृश्य कटकर अंदर जाता है, हॉल भरा हुआ है, एक ओर प्रेस वाले बैठे हैं, इसे बाकायदा फोकस करना है। एक महिला माइक पर से उतरकर नीचे आती है, हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट। अब मंच पर से उठकर रजनी माइक पर आती है, पहली पंक्ति में रजनी के पति भी बैठे हैं।
बहनों और भाइयों, इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति और जोश ही बता रहा है कि अब हमारी मंजिल दूर नहीं। इन दो महीनों में लोगों से मिलने पर इस समस्या के कई पहलू हमारे सामने आए, कुछ अभी आप लोगों ने भी सुने। ये भी सामने आया कि बहुत से बच्चों के लिए ट्यूशन जरूरी भी है। माएं इस लायक नहीं होती कि अपने बच्चों को पढ़ा सकें, और पिता
जरा रुक कर,
जैसे वे घर के और किसी काम में जरा भी मदद नहीं करते, बच्चों को भी नहीं पढ़ाते।
पृष्ठ संख्या 95।
तब कमजोर बच्चों के लिए ट्यूशन जरूरी भी हो जाती है। बड़ा अच्छा लगा जब टीचर्स की ओर से भी एक प्रतिनिधि ने आकर बताया कि कई प्राइवेट स्कूलों में तो उन्हें इतनी कम तनख्वाह मिलती है कि ट्यूशन ना करें तो उनका गुजारा ही ना हो। कई जगह तो ऐसा भी है कि कम तनख्वाह देकर ज्यादा पर दस्तखत करवाए जाते हैं। ऐसे टीचर से मेरा अनुरोध है कि वे संगठित होकर एक आंदोलन चलाएं और इस अन्याय का पर्दाफाश करें।
हॉल में बैठा हुआ पति धीरे से फुसफुसाता है, लो अब एक और आंदोलन का मसाला मिल गया। कैमरा फिर रजनी पर।
इसलिए अब हम अपनी समस्या से जुड़ी सारी बातों को नजर में रखते हुए ही बोर्ड के सामने ये प्रस्ताव रखेंगे, ऐसा नियम बनाएं कि कोई भी टीचर अपने ही स्कूल के छात्रों का ट्यूशन नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती करने, उनके नंबर काटने की गंदी हरकतें अपने आप बंद हो जाएंगी। साथ ही ये भी हो कि इस नियम को तोड़ने वाले टीचर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब आप लोग अपनी राय दीजिए।
सारा हॉल अप्रूव्ड अप्रूव्ड की आवाजों और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। दृश्य समाप्त। नया दृश्य। रजनी का फ्लैट। सवेरे का समय, कमरे में पति अखबार पढ़ रहा है। पहला पृष्ठ पलटते ही रजनी की तस्वीर दिखाई देती है। जल्दी जल्दी पढ़ता है, फिर एकदम चिल्लाता है।
पति,
अरे रजनी रजनी, अरे सुनो तो, बोर्ड ने तुम लोगों का प्रस्ताव ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया।
रजनी भीतर से दौड़ती हुई आती है, अखबार छीन कर जल्दी जल्दी पढ़ती है, चेहरे पर संतोष, प्रसन्नता और गर्व का भाव।
पृष्ठ संख्या 96।
रजनी, तो मान लिया गया हमारा प्रस्ताव, बिल्कुल जैसा का तैसा, और बन गया ये नियम। मैं तो कहती हूँ कि अगर डटकर मुकाबला किया जाए तो कौन सा ऐसा अन्याय है जिसकी धज्जियां ना बिखेरी जा सकती हैं। पति मुग्ध भाव से उसे देखते हुए,
आई एम प्राउड ऑफ यू रजनी, रियली रियली आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू।
रजनी इतराते हुए, दो महीने तक लगातार मेरी धज्जियां बिखेरने के बाद।
लीला बेन, कांति भाई और अमित का प्रवेश।
लीला बेन, उस दिन तुम्हारी जो रसमलाई रह गई वो आज खाओ,
और सबकी और सबके हिस्से की तुम ही खाओ। अमित दौड़कर अपने हाथ से उसे रसमलाई खिलाने जाता है, पर रजनी उसे अमित के मुंह में ही डाल देती है। सब हंसते हैं, हंसी के साथ ही धीरे धीरे दृश्य समाप्त होता है।
अभ्यास
पाठ के साथ। पृष्ठ संख्या 97।
अभ्यास
पाठ के साथ। एक, रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से ले लिया क्योंकि
को वह अमित से बहुत स्नेह करती थी।
ख, अमित उसकी मित्र लीला का बेटा था।
ग, वह अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की सामर्थ्य रखती थी।
घ, उसे अखबार की सुर्खियों में आने का शौक था।
दो, जब किसी का बच्चा कमजोर होता है तभी उसके माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं। अगर लगे कि कोई टीचर लूट रहा है तो उस टीचर से ना लें ट्यूशन, किसी और के पास चले जाएं। ये कोई मजबूरी तो है नहीं। बताएं कि यह संवाद आपको किस सीमा तक सही या गलत लगता है, तर्क दीजिए।
तीन, तो एक और आंदोलन का मसला मिल गया। फुसफुसाकर कही गई यह बात का किसने किस प्रसंग में कही।
खा, इससे कहने वाले की किस मानसिकता का पता चलता है।
चार, रजनी धारावाहिक की इस कड़ी की मुख्य समस्या क्या है। क्या होता अगर का अमित का पर्चा सचमुच खराब होता।
ख, संपादक रजनी का साथ ना देता।
पाठ के आसपास। एक, गलती करने वाला तो है ही गुनाहगार, पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनाहगार नहीं होता। इस संवाद के संदर्भ में आप सबसे ज्यादा किसे और क्यों गुनाहगार मानते हैं।
दो, स्त्री के चरित्र की बनी बनाई धारणा से रजनी का चेहरा किन मायनों में अलग है।
तीन, पाठ के अंत में मीटिंग के स्थान का विवरण कोष्टक में दिया गया है। यदि इसी दृश्य को फिल्माया जाए तो आप कौन कौन से निर्देश देंगे।
चार, इस पटकथा में दृश्य संख्या का उल्लेख नहीं है, मगर गिनती करें तो 7 दृश्य हैं। आप किस आधार पर इन दृश्यों को अलग करेंगे।
पृष्ठ संख्या 98।
भाषा की बात।
एक, निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित अंश में जो अर्थ निहित हैं उन्हें स्पष्ट करते हुए लिखिए। का, वरना तुम तो मुझे काट ही देती।
ख, अमित जब तक तुम्हारे भोग नहीं लगा लेता हम लोग खा थोड़ ही सकते हैं।
ग, बस बस मैं समझ गया। कॉर्ड मिक्सिंग, कॉर्ड स्विचिंग। एक, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है क्या। वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ऊपर दिए गए संवाद में 2 पंक्तियां हैं। पहली पंक्ति में रेखांकित अंश हिंदी से अलग अंग्रेजी भाषा का है, जबकि शेष हिंदी भाषा का है। दूसरा वाक्य पूरी तरह अंग्रेजी में है। हम बोलते समय कई बार एक ही वाक्य में 2 भाषाओं यानी कोड का इस्तेमाल करते हैं। यह कोड मिक्सिंग कहलाता है। जबकि एक भाषा में बोलते बोलते दूसरी भाषा का इस्तेमाल करना कोड स्विचिंग कहलाता है। पाठ में से कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग के 3-3 उदाहरण चुनिए और हिंदी भाषा में रूपांतरण करके लिखिए।
पटकथा की दुनिया। आपने दूरदर्शन या सिनेमा हॉल में अनेक चलचित्र देखे होंगे। पर्दे पर चीजें जिस सिलसिलेवार ढंग से चलती हैं उसमें पटकथा का विशेष योगदान होता है। पटकथा कई महत्वपूर्ण संकेत देती है, जैसे
कहानी या कथा,
संवादों की विषय वस्तु,
संवाद अदायगी का तरीका,
आसपास का वातावरण या दृश्य,
दृश्य का बदलना।
इस पुस्तक के अपने पसंदीदा पाठ के किसी एक अंश को पटकथा में रूपांतरित कीजिए।
शब्द छवि, कंग्रेचुलेशंस,
यानी बधाई हो, मुबारक हो।
हाफ ईयरली,
यानी छमाही, अर्धवार्षिक।
बेगुनाह,
यानी जिसका कोई गुनाह ना हो, निर्दोष।
पृष्ठ संख्या 99। हिकारत,
यानी उपेक्षा।
डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन,
यानी शिक्षा निदेशक।
रिकॉग्नाइज,
यानी मान्य।
रिसर्च प्रोजेक्ट,
यानी शोध परियोजना।
कंडक्ट,
यानी संचालन।
सुनती ही नहीं,
अर्थात सुनती ही नहीं।
दखल अंदाजी,
यानी हस्तक्षेप।
पेरेंट,
यानी अभिभावक।
इम्पोर्टेंट मैटर्स,
यानी महत्वपूर्ण विषय।
बाकायदा,
यानी कायदे के अनुसार।
इश्यू,
यानी मुद्दा।
फोकस करना,
यानी ध्यान मिलाना।
अप्रूव्ड,
यानी स्वीकृत।
मोन्टाज,
यानी दृश्य मीडिया टेलीविजन में जब अलग दृश्यों या छवियों को एक साथ इकट्ठा कर उसे संयोजित किया जाता है तो उसे मोंटाज कहते हैं।